मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 मार्च 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के साथ ही मैं आप सबको अभी भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ये शुभकामनाएं हैं होली पर। होली पर एकेडमी के अपने सभी साथियों की ओर से, आप सब अपने प्रिय श्रोता मित्रों की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मैं अपनी ओर से समस्त देश के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा मित्रों। और यह शुभकामनाएं मैं इतनी जल्दी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल शनिवार है, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाऊंगा। इसके बाद रविवार है, उस दिन भी मुखातिब नहीं हो पाऊंगा और उसके अगले दिन ही होली है। तो हम लोग सभी की ओर से होली की पूर्व शुभकामनाएं स्वीकार करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो होली का जो उल्लास है, दो ही चीज तो इसमें है, एक तो उल्लास और दूसरा रंग, विविध रंग। और जब अलग अलग कई रंगों को मिला दिया जाता है तो फिर वो जो रंग बनता है, मुझे लगता है कि उसे ही शायद हम उल्लास कर कहते हैं। अकेले में तो हम उदास ही होते हैं, वो इकलौता रंग होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, यानी कि दूसरा रंग हम में शामिल होता है, वैसे ही थोड़ा सा उल्लास बढ़ जाता है, निराशा कम हो जाती है। और जैसे ही हम अपने कई लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गुलदस्ता बनकर तैयार हो गया हो और उसी में लहराने वाली, खिलने वाली, मुस्कुराने वाली हम एक कली हो और उल्लास का रंग चारों ओर बिखर जाता है। तो दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह उल्लास का रंग, यह बहुरंग आप सबके जीवन में लगातार बिखरता रहे, स्थान पाता रहे। तो मित्रों, आइए अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। और इस लाइफ मैनेजमेंट को चलिए मैं थोड़ा सा रंग से एक अलग तरीके से जोड़कर ही देखने की कोशिश करता हूं। इस दोस्तों, हमारे यहां तो कहा ही गया है सच्चिदानंद आन, ईश्वर को ही सत चित और आनंद माना गया है। ईश्वर ही आनंद स्वरूप है और यदि हम ईश्वर की संतान है तो बट नेचुरली कि हम भी आनंद स्वरूप ही हैं, हम में भी आनंद ही आनंद भरा हुआ है, जिसे मैं अभी उल्लास कह रहा हूं। जहां उल्लास है वहां आनंद है और जहां आनंद है वहां उल्लास है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के जन्मदाता हैं। दोस्तों, फिर ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर का यह आनंद खत्म हो जाता है, हमारे अंदर का यह उल्लास गायब हो जाता है? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं, उन सभी कारणों पर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं अभी जिस कारण को ले रहा हूं वो पिछले 2-3 दिनों से जो हम लोग का विषय चला आ रहा है, मैं उसी के संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए यहां उस कारण को स्पेशली आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मित्रों, आप महसूस कीजिए कि जब आपको लगता है कि आप सबके जैसा हैं, सबके रंगों में ही आपका रंग समाया हुआ है, जो सूफियाना अंदाज है, जिंदगी जीने का एक सूफियाना अंदाज, तब तक आपको कितना हल्का लगता है, कितना सरल लगता है, कितना सहज लगता है। क्योंकि जैसे ही हमें सरल, सहज और हल्कापन महसूस होता है, याद रखिए हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति के हिस्से बन जाते हैं। यानी कि हमारी जो अपनी एनर्जी है वो ये मानकर चलिए कि ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ जाती है, तब हमें बट नेचुरल है कि अच्छा लगना ही है। क्योंकि हमारे दिमाग पर असहजता, असाधारणता, विशिष्टता, आप कह लीजिए कि कुछ एलीट क्लास का व्यक्ति होने का, प्रिविलेज्ड व्यक्ति होने का जो बोझ होता है, अनावश्यक बोझ, वो हट जाता है। और जैसे ही हट जाता है बट नेचुरली कि हम हल्के हो जाते हैं। और ये तो प्रकृति का नियम है, आप जानते हैं कि जो चीज जितनी हल्की होगी वो आसमान की तरफ उतनी ज्यादा उड़ती चली जाएगी। लेकिन हमने कर क्या रखा है दोस्तों, हमने पता नहीं अपने अंदर कितनी सारी गांठें बांध रखी हैं। ठीक वैसी गांठें जैसे कि आप एक रुमाल को अपने पॉकेट से निकालिए, उसके कोने को पकड़कर लहराइए, आप देखिए कि रुमाल हवा के साथ कैसे फर 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 करने लगता है। लेकिन उसी रुमाल के बीच में एक गांठ बांध दीजिए और अब उसको लहरा करके देखिए, आप देखिए कि कैसे रुमाल की गर्दन बिल्कुल ऐसे लटक गई है जैसे कि किसी गमले में आपने कई दिनों से पानी न डाला हो। केवल एक गांठ ने उस रुमाल के लहराने को, उस रुमाल के फहराने को खत्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों क्या है? इसी भाव को हम अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हां कुछ कुछ ऐसा ही है जो हमारे अंदर में जो खिलावट होनी चाहिए, हमारे अंदर की जो खिलखिलाहट होनी चाहिए, हमारे अंदर का जो एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, एक बहुत ही प्राकृतिक बहाव होना चाहिए, उस बहाव को बांध के जरिए हमने कहीं बांध दिया है, कहीं रोक दिया है। और यदि रोक दिया है तो आप खुद सोच करके देखिए कि बहाव की खिलखिलाहट गायब होती हो गई, बहाव की चमचमाहट गायब होती हो गई, और सबसे बड़ी बात तो है कि बहाव की पवित्रता गायब हो गई। तालाब का पानी हम नहीं पीते, जनरली नहीं पीते, क्योंकि उसका पानी रुका हुआ है, लेकिन नदी के पानी को पीने में कोई हिचक नहीं दिखाते क्योंकि वो बह रहा है। और इसलिए नहीं पीते हैं कि वो बह रहा है, बल्कि इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि जो पानी बह रहा है वह शुद्ध होता है, वह प्योर होता है, और उस प्योरिटी को हम अपने बांध के जरिए, अपनी सीमाओं के जरिए, अपनी दीवारों के जरिए खत्म कर देते हैं। तब हम थोड़ा सा भ्रम में हो सकते हैं, थोड़ा सा इगोइस्ट भी हो सकते हैं, थोड़े से घमंड में भी हो सकते हैं कि अरे हमने तो पानी को बांध दिया, हमने यहां इतना बड़ा डैम बना लिया और जब जरूरत होगी हम इस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, खेती बाड़ी और बिजली उत्पादन के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इसे अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं और जीवन के प्रवाह को रोक देते हैं तो बहने की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। और अगर हम बह नहीं रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि धीरे धीरे हमारे अंदर बदबू तो पैदा होने लगेगी। आप देखिए कि जो बांध भी होते हैं उन बांधों के पानी को भी निष्कासित किया जाता है, भले ही उसे जरूरत के हिसाब से नहरों के जरिए ड्रेन किया जाए, नहरों के जरिए बाहर निकाला जाए, लेकिन उसे एक जगह हमेशा के लिए रखा नहीं जाता। और कल्पना करके देखिए कि अगर बरसात का पानी उस बांध में न आए तो उस बांध का क्या होगा। और मित्रों हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम अपनी जिंदगी को केवल चारों तरफ दीवारें खड़ी करके ही नहीं बांधते, बल्कि उन चारों दीवारों के ऊपर एक छत डालकर भी उसे बंद कर देते हैं, छत भी डाल देते हैं, कोई बाहर का पानी नहीं। दोस्तों बाहर के सारे रंगों का प्रवेश हमने निषेध कर दिया है, एक ही रंग में डूबे हुए हैं, या कह लीजिए कि घमंड में डूबे हुए हैं, तो जीवन का उत्सव कैसे बनेगा, जीवन में जीवन बहुरंगी कैसे बनेगा, जीवन में उल्लास की छलछलाहट कहां से आएगी। मित्रों यहां मैं जिस दीवार की बात कर रहा हूं, यहां मैं जिस छत की बात कर रहा हूं, वह दीवार और वह छत है, सच पूछिए तो ईगो की छत, ईगो, घमंड। घमंड शब्द पता नहीं ईगो के सामने मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है, हालांकि मनोविज्ञान में इसका अहम शब्द प्रयोग में लाया गया है जो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। आप सोच करके देखिए मित्रों कि जो ईगो में, ईगो से जो भरा हुआ व्यक्ति है वो सच में कभी कभी मुझे बहुत दया आती है कि सच में वो कितना अकेला व्यक्ति है, ईगो के तुंग शिखर पर बैठा हुआ है, एक शिखर पर जहां दूसरे के लिए जगह ही नहीं। और ईगो वही है कि आप दूसरे को स्थान दे ही नहीं पाते, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा जो दो तीन दिन पहले मुझे पता लगी, एक विवाह की घटना थी। और घटना यह थी कि एक शादी हो रही थी, मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, उनकी शादी में मैं यहां क्लासेस के कारण नहीं जा पाया, शादी हो रही थी। और उस शादी में जो लड़की वाले थे वो उसी जगह पर थे जहां के वो थे, और लड़के वाले बाहर से गए थे शादी कराने के लिए। तो मित्रों जो लड़के पक्ष के जो लोग थे उनके एक दामाद भी हैं, दामाद थे। तो दोस्तों पूरी की पूरी व्यवस्था लड़की वालों की थी, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक पता लगा कि जो दामाद साहब हैं, जो लड़के वालों के जो दामाद हैं, वो नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? इस बात को लेकर के नाराज हो गए कि उन्हें उनसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, लंच या डिनर के लिए उनसे किसी ने कहा नहीं। और मजेदार बात है कि इन दामाद को इस घर में आई, यानी कि शादी हुए लगभग लगभग 8-10 साल तो हो चुके हैं, मतलब वो 8-10 साल सीनियर हैं इस परिवार के। और इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उनसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। अब साहब जब दामाद जी नाराज हो गए तो मतलब पूरा तहलका मच गया, बवाल मच गया। अब सब जा जा करके दामाद जी को मना रहे हैं, उनके ससुर भी मना रहे हैं, उनके चाचा ससुर भी मना रहे हैं, जितने लोगों की भी चल सकती थी वो सब मना रहे हैं, और उनको मना करके फिर वो खाने की थाली के सामने ला रहे हैं कि दामाद जी आप खाइए। दोस्तों इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, आपको नहीं लगता कि कितना करुण प्रसंग है, कितना करुण प्रसंग है? अरे तुम अपने इस दामाद वृत्ति को एक बार छोड़ करके तो देखो, जिंदगी का मजा तो तभी ले पाओगे। तुमने अपने को अलग ही कर रखा है, पानी की बाल्टी में पानी बनकर समा ही नहीं पा रहे हो, उसके ऊपर तैरना चाहते हो तेल बनकर अलग थलग, और दो बूंद तेल अगर पानी बनकर के आप सोचिए कि उस बाल्टी में समा जाए तो कितने बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी दो बूंद ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं, दो बूंद आपको मात्रा में ज्यादा लग रही हैं, गुण में ज्यादा लग रहे हैं, अलग थलग रह के ज्यादा लग रहे हैं। आप इस परिवार वाले को अपना परिवार मान ही नहीं पा रहे हैं। जो परिवार, जिस परिवार की गई हुई लड़की आपको आपका उत्तराधिकारी देगी, उसको आप अपना ही नहीं मान पा रहे हैं। तो कभी उस लड़की की मानसिकता के बारे में तो सोचिए कि जिनकी माता पिता को आप इस रूप में देख रहे हैं, वो लड़की आपको किस रूप में देखेगी? फिर आपके भी तो माता पिता हैं, वो आपके माता पिता को किस रूप में देखेगी? ठीक है, ऊपरी तौर पर तो सब कुछ मजबूरी है, सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन अंतर मन क्या कर रहा होगा? तो आपने सबसे न मिल करके सारे के सारे रंगों को रिजेक्ट करके आपको नहीं लगता है कि अपने जिंदगी को एक रंगी बना दिया? और मैं समझता हूं कि एक रंगी होना क्या अपने आप में बदरंग होना नहीं है? दोस्तों ये पुरुष का अहम है, सबका नहीं है। मैं ऐसे भी दामादों को जानता हूं जो इस दामाद वृत्ति से परे हैं, वो मान करके चलते हैं कि अगर मेरी पत्नी का ये घर है तो ये मेरा ही घर है। इसमें विशिष्टता कैसी? अपनी विशिष्टता को डाइल्यूट करके तो देखिए, कभी उसे दूसरों में शामिल करके तो देखिए, पिघला करके तो देखिए। जब लोहा पिघलता है, सोना पिघलता है, याद रखिए मित्रों, तभी उससे अपनी मनमर्जी की तस्वीर बनाई जा सकती है, मनमर्जी की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उसे मनमर्जी में ढाला जा सकता है। अदरवाइज आप बने रहिए लोह पिंड बने रहिए, आप सोने के पिंड बने रहिए, पिंड तो पिंड ही होगा, उसकी कोई उपयोगिता तो नहीं है। हाँ कीमत हो सकती है, आप अपनी कीमत आंकते रहिए। तो मित्रों होली का त्यौहार है, सच पूछिए तो होली का त्यौहार इन कुंठाओं से मुक्ति पाने का ही त्यौहार है। होली का जो त्यौहार है वो अपने अंदर की गांठों को खोलने का ही त्यौहार है। आइए हम सब इस त्यौहार को इस रूप में लें कि हम अंदर की अपनी कुंठाओं को खत्म करेंगे, गांठों को पहले तो ढीला करेंगे, और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने अंतर्मन को इन गांठों से मुक्त करके दुनिया का जो विशाल रंग है इसमें अपने आप को समर्पित कर देंगे। आप देखिए कि जैसे ही आप विशाल से जुड़ते हैं, विशाल के हिस्से बनते हैं, विशालता अपने आप आ जाती है और आप खुद विशाल बन जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहां मैं फिर से एक बार आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।